الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. तो इस दर्स के अंदर हम रिश्तेदारियां निभाना, रिलेशनशिप मैनेजमेंट का टॉपिक पढ़ रहे हैं। अपने हजरत के बयानात उमूर खानदारी में हुस्न इंतजाम के सिलसिले में से, तो इसमें तीन ऐसे रिश्ते बताए थे हजरत ने कि जिनके अंदर खवातीन का मामला जो है वो काफी कमजोर होता है। सबका नहीं जाहिर है, लेकिन जिनका होता है किसी गलती की वजह से तो उनका कमजोर होता है। वो तीन रिश्ते कौन से हैं? खाविंद के साथ, दूसरा सास के साथ, और तीसरा औलाद के साथ। तो ये तीन बहुत अहम रिश्ते हैं, और इन तीनों का ताल्लुक जो है वो अज़दवाजी ताल्लुक, अज़दवाजी जिंदगी से ही है। क्योंकि जब अज़दवाजी जिंदगी होती है तभी खाविंद होते हैं, तभी जो है वो सास होती हैं, और तभी औलाद होती है। गैर शादीशुदा औरत की जो होती है, जिसके अब तक शादी हुई नहीं होती है, तो उसका खाविंद और उसकी सास और उसकी औलाद नहीं होती है। तो खाविंद के साथ हमने अब तक जो है वो जो चीजें पढ़ी हैं कि कम्युनिकेशन को बेहतर बनाए, खाविंद के साथ बता जो जो बातचीत है अपना, इजहार मुद्दा कम्युनिकेशन का उर्दू जुबान के अंदर प्रॉपर जो तर्जुमा बनता है वो इजहार मुद्दा है। ठीक है, यानी अपने दिल में जो बात है तो उसका इजहार कैसे करना, इसी को कम्युनिकेशन कहा जाता है। फिर इसके बाद दूसरी बात पढ़ी थी कि उसूली बात को चुने, यानी पिक योर बैटल। सारी बैटल्स को जो है वो लेकर के लड़ना मत शुरू कर दिया करें, बल्कि बी वेरी सेलेक्टिव इन द बैटल्स दैट यू वॉन्ट टू फाइट। ठीक है, वरना फिर आप अपने आप को बहुत कमजोर और बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में डाल देंगी। सारी लड़ाइयाँ कोई भी नहीं लड़ सकता। वैसे भी लड़ाई की तो बात यहाँ पर चूंकि सिर्फ तर्जुमा बनता है, लड़ाई बैटल का तर्जुमा लड़ाई बनता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खाविंद के साथ जो है वो लड़ाइयाँ लड़ें, चाहे वो कम लड़ें चाहे ज्यादा लड़ें, कोई भी लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन बात यही थी कि हर चीज के ऊपर बहस ना करें, हर चीज को जो है ना वो इशू ना बनाए। अच्छा, फिर उसके बाद तीसरी बात थी कि मसले को समझने की कोशिश करें। ठीक है, यानी पहले ही बोलना शुरू कर देना और कानों का इस्तेमाल ना करना तो ये बेवकूफी की अलामत होती है और डिजास्टर तक मसले को ले जाती है। तो पहले मसले को समझने के लिए अल्लाह ताला ने जो दो कान दिए हैं उनको इस्तेमाल करना है, और कानों के भी अंदर एक दिमाग दिया हुआ है अल्लाह ताला ने, तो उस दिमाग को भी इस्तेमाल करना है ताकि फिर बात समझ में आए। खाविंद की राय का एहतराम करें, रिस्पेक्ट हिज ओपिनियन। इस पे काफी शाफी बात हो चुकी है। बात मुनासिब वक्त पर करें, हर वक्त जो है वो हर बात सही नहीं होती, बल्कि जो प्रॉपर वक्त होता है बात करने का तो उसी वक्त बात करें। तो वो प्रॉपर वक्त की क्या तारीफ होती है, क्या निशानियां होती हैं, इस पर बात करी थी। अपनी गलती को तस्लीम करें, बताया था कि ये सबसे मुश्किल काम है, अपनी गलती को तस्लीम कर लेना। तो इसी वजह से हमारे मशायख फरमाते हैं के इस्लाह के रास्ते पर जो सबसे पहला कदम होता है, सबसे पहला जीना होता है, या बस सबसे पहला स्टेप होता है, वो दीदे कसूर होता है। दीदे कसूर यानी अपने कसूर, अपनी गलती को देखने की सलाहियत। ये इसलाह के रास्ते पर पहला स्टेप होता है। अगर ये हासिल नहीं है तो फिर इसलाह नहीं हो सकती है। तो इसी वजह से दीद कसूर के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह मुझे दीद कसूर अता फरमा दीजिए। और दीद कसूर के बाद फिर उस कसूर को तस्लीम करने वाली जुबान भी अता फरमा दीजिए, ठीक है, मानने वाला दिल भी अता फरमा दीजिए कि मैं अपने कसूर को मान भी लूं, ठीक है। ये किस्मत वालों को मिलता है, या क्या मतलब इसका कहने का, कि जिनको मिलता है वो खुश किस्मत होते हैं। तो हमें अल्लाह ताला से खुश किस्मती मांगनी चाहिए, ठीक है, ये दीद कसूर हमें अता हो जाए। अच्छा, उसके बाद फिर खाविंद की बात दूसरे दूसरे लोगों से ना करें, ठीक है, यानी टॉक टू योर हस्बैंड, नॉट अबाउट हिम टू द पीपल, ठीक है। तो ठीक है, ये भी काफी बात हो चुकी पिछली क्लास में ही। अब आज जो हमने पढ़ना है वो है उसका उन्वान बांधा, काबिले कुबूल बने। काबिले कुबूल क्या मतलब, कि ऐसी बने कि आप कुबूल कर लिए जाने के काबिल हो, ठीक है, काबिले कुबूल, कुबूल कर लिए जाने के काबिल हो। तो इसका वो होता है ना, अल अशियाउ तोरफू बे अदादेहा, के बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, बहुत सी अशिया ऐसी होती हैं, तोरफू के वो पहचानी जाती हैं, बे अजदादिहा, अपनी जिद से, अपने ऑपोजिट से, ठीक है। तो काबिल कबूल बने तो ये भी अपनी जिद से यानी अपनी मुतजाद से समझ में बड़ी आसानी के साथ आ सकता है। वो क्या कि इसका ऑपोजिट बनेगा कि क्या ख्याल, क्या आप आपसे ना पूछ लें, इसका ऑपोजिट क्या बनेगा, हम बोलेंगे तो आपको शायद बुरा ना लग जाए, आप खुद ही बता दें, काबिले कबूल बने का ऑपोजिट क्या बनेगा, मुतादात उर्दू जुबान में क्या कह सकते हैं, काबिले कबूल बनने के ऑपोजिट को, जी सिरलन यड, क्या लिखा है आपने, सर लन, क्या लिखा है आपने, समझ में नहीं आ रहा, नाकाबिले बर्दाश्त, माशाल्लाह ये भी अच्छा तर्जुमा किया है आपने। अच्छा, सर का दर्द लिखना चाह रही थी तो पता नहीं क्या लिख दिया था, सिर लनयार्ड। जल्दी, इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए ना कि बंदा लिखे फिर उसके बाद पढ़े बगैर ही उसको सेंड कर दे, वो खुद ही समझते रहेंगे। तो लिख करके कम से कम खुद तो पढ़ लिया करें। अच्छा, तो सर लिखना चाह रही थी, सर का दर्द ना बने। सर का दर्द जो है ना, ये तो बा मुहावरा किस्म का आपने लिख दिया है, बल्कि सही तर्जुमा बनता, इसका सही ऑपोजिट तर्जुमे के तब यानी लफ्जन बनता है नाकाबिले बर्दाश्त, कि आप जो है ना वो बर्दाश्त के काबिल ना, या नाकाबिले कबूल भी अच्छा इसका ऑपोजिट बन सकता है, ठीक है। ढीठ, ढीठ बनना, नहीं ढीठ बनना तो इसका बिल्कुल भी ऑपोजिट नहीं बनेगा। काबिले नफरत, हाँ ये थोड़ा सा ज्यादा एक्सट्रीम लगता है, काबिल नफरत ना बने, काबिल कबूल बने, नहीं, लेकिन ये इसका बिल्कुल एग्जैक्ट ऑपोजिट नहीं बनता, ठीक है। काबिल मोहब्बत का ऑपोजिट तो काबिल नफरत बनेगा, लेकिन काबिल कबूल का ऑपोजिट जो है ना वो ना काबिल कबूल या ना काबिल बर्दाश्त बनेगा। काबिल रद, ये जरा खतरनाक किस्म का, लेकिन सही ऑपोजिट है ये इसका, काबिल रद, ठीक है, काबिले रद। तो इसका फिर एक और भी लफ्ज होता है इसके लिए, जो कि जरा है तो हकीकत लेकिन बड़ी कड़वी हकीकत। तो काबिले रद को दूसरे जुमले में, दूसरे लफ्ज में क्या कहा जाता है, जरा, हाँ ठीक है, जरा दिल के अंदर जो है ना वो इससे नफरत और कराहियत और खौफ पैदा होने के लिए ये लफ्ज बड़ा जरूरी है, ठीक है। वो क्या लफ्ज है? मरदूद। क्या लफ्ज है? मरदूद, यानी मरदूद किसको कहते हैं? जिसको रद्द कर दिया जाए। ठीक है, मरदूद किसको कहते हैं? जिसको रद्द कर दिया जाए। ठीक है, यजीर फितनी। पता नहीं इस लैंग्वेज को तो मैं नहीं जानता जो आपने लिखा है, इसमें कौन सी वाली जुबान का लफ्ज है? तो ठीक है, तो अब ये कितना खतरनाक लफ्ज है ना, क्योंकि शैतान मरदूद है। ठीक है, शैतान को अल्लाह ताला ने रद्द कर दिया। ठीक है, उसको कबूल नहीं किया, उसको रद्द कर दिया। सही है, तो काबिल कबूल बने, अगर नहीं बनेंगी, या कोई भी, अब ये सिर्फ बीवी के लिए नहीं है, सिर्फ औरत के लिए नहीं है, कोई भी इंसान जो काबिल कबूल नहीं बनेगा, तो फिर वो क्या बन रहा होगा? मरदूद बन रहा होगा। राइट, मरदूद बन रहा होगा। तो क्या हम मरदूद बनने के लिए तैयार हैं? क्या हम मरदूद बनना चाहते हैं? ठीक है, नहीं बनना चाहते। उम्मीद है कि कोई भी आप में से नहीं चाहता होगा कि वो मरदूद बने। ठीक है, तो फिर अब अगला सवाल क्या होता है कि भाई कैसे मरदूद ना बने। राइट, हम वो क्या करें कि जिससे कि हम मरदूद बनने से बच जाएं? इसका जवाब क्या है? ये गौर से सुने। ठीक है, इसका जवाब क्या है कि अब जो समझाया जा रहा है उसको गौर से सुने, क्योंकि जब तक किसी चीज का इल्म हासिल नहीं करते, उस वक्त तक उसके ऊपर अमल नहीं कर सकते, उस वक्त तक वो काम कर ही नहीं सकते जब तक उसका इल्म हासिल ना करें। ठीक है, तो मरदूद बनने से बचना है तो फिर सीखना पड़ेगा कि मरदूद कैसे ना बने। ठीक है, तो फरमाते हैं कि अगला पॉइंट है बी एक्सेप्टेंस। ये अंग्रेजी में किसी ने यहाँ पे ट्रांसलेट कर दिया है, पब्लिशर ने या प्रिंटर ने, लेकिन ये प्रॉपर लफ्ज नहीं है अंग्रेजी का। तो अंग्रेजी में अगर इसके लिए कोई ट्रांसलेशन बनेगी ना, तो वो होगी बी एक्सेप्टिंग। ठीक है, बी एक्सेप्टिंग। तो बी एक्सेप्टिंग यानी खुद ऐसी बने कि आपको एक्सेप्ट कर लिया जाए, आपको एक्सेप्ट किया जाए। ठीक है, आपको रद्द ना कर दिया जाए। तो अब देखिए, उसके लिए जो है ना, वो एक अजीब तरीका बता रहे हैं कि आपको एक्सेप्ट कर लिया जाए। इसके लिए जो तरीका बता रहे हैं ना, वो बड़ा बड़ा अजीब तरीका है। ठीक है, वो सुन करके समझ में आएगा कि फरमाते हैं कि अपने खाविंद से काबिल कबूल रवैया रखें, अपने खाविंद के साथ काबिल कबूल रवैया रखें, काबिल कबूल बने। ठीक है, टाइटल क्या है? काबिल कबूल बने, लेकिन तरीका क्या है कि खाविंद से काबिल कबूल रवैया रखें, यानी अपने खाविंद से रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, हकीकी उम्मीदें रखें। ठीक है, खाविंद से हकीकी उम्मीदें रखें। भाई टाइटल तो था कि अपने आप को काबिल कबूल बनाए, और यहां पर बात क्या हो रही है कि खाविंद से काबिल कबूल रवैया रखें। क्या कि खाविंद को आसानी से एक्सेप्ट कर लें, खाविंद को एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, खाविंद को एक्सेप्ट कर लें। तो टाइटल तो कुछ और था कि खुद काबिल कबूल बने, और तरीका क्या है कि खाविंद को कबूल कर लें। बात तो बजायर उल्टी लग रही है, लेकिन इसके ऊपर एक वाकया याद आता है, एक हिकायत याद आती है। ठीक है, अब वो हदीस है या नहीं है ये मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम हिकायत के दर्जे में तो वो आती है। ठीक है, हो सकता है हदीस भी हो, अल्लाह आलम। वो क्या? वो भी इसी किस्म की हदीस है। ठीक है, या वो भी इसी किस्म की बात है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, क्या पूछा? अब याद आ गया इसके यहाँ पे कहां से उसकी रेलेवेंस बनती है? अजीब, वो भी अजीब बात है, ये भी अजीब बात है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा कि ए अल्लाह, अच्छा नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम ने नहीं, बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि आप अल्लाह ताला से जाके कलाम करते हैं, तो आप अल्लाह ताला से पूछें कि हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह हमसे राजी है। ठीक है, माशाल्लाह ये पहचान गई, इन्होंने लिखा है डायरेक्ट मैसेज में, कि हमें कैसे पता चलेगा कि आप हमसे राजी हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, मैं जब नेक्स्ट टाइम जाऊंगा ना बात करने के लिए तो मैं आपकी ये आपका ये सवाल पूछ लूंगा। ठीक है, तो उन्होंने जाके जब अल्लाह ताला से पूछा तो अल्लाह ताला ने क्या जवाब दिया? अल्लाह ताला ने ये जवाब नहीं दिया कि तुम्हें ये पता चलेगा कि मेरी तरफ से तुम्हारे ऊपर जो है ना वो फरिश्ते नाजिल होना शुरू हो जाएंगे और तुम्हें फरिश्ते नजर आना शुरू हो जाए तो उसका मतलब ये है कि मैं तुमसे राजी हूं, या तुम्हारे जो है ना वो हर मुश्किल आसान हो जाए तुम्हारी, ठीक है, हर मुश्किल तुम्हारी जिंदगी से दूर हो जाए, इसका मतलब यह है कि मैं तुमसे राजी हूं, पहचान जाना कि मैं तुमसे राजी हूं, ठीक है, या जो है वो तुम्हारे पास दौलत के अंबार लग जाए तो समझ जाना कि मैं तुमसे राजी हूं, या औलाद के अंबार लग जाए तो समझ जाना कि मैं तुमसे राजी हूं। राइट? नहीं, कुछ भी नहीं फरमाया, बल्कि क्या फरमाया, अजीब बात फरमाई, ठीक है, कि अगर तुम मुझसे राजी हो, अपने दिल में झांक करके देखो, अपने ही दिल में झांक करके देख लो, अगर तुम मुझसे राजी हो इसका मतलब यह है कि मैं तुमसे राजी, ठीक है, अगर तुम मुझसे राजी हो तो इसका मतलब यह है कि मैं तुमसे राजी, ठीक है, बजाहिर उल्टी बात, भाई सीधा सीधा हम पूछ रहे थे कि आप हमसे राजी हैं कि नहीं, ये बता दीजिए, उसकी कोई निशानी बताएं, ठीक है, लेकिन बात पलट करके उनके ऊपर डाल दी और आसान कर दिया, अपने दिल में झांक करके देखो, क्या मतलब कि मैंने जो तुम्हें हालात अता फरमाए, मैंने जो तुम्हें नेमतें अता फरमाई हैं और जो नेमतें नहीं अता फरमाई हैं, अगर तुम इनके ऊपर मेरा शुक्र अदा कर रहे हो और जो नहीं मिला उसके ऊपर तुम सबर कर रहे हो तो इसका मतलब यह है कि मैं तुमसे राजी हूं, ठीक है, तो वही उसूल यहां पर भी फरमा रहे हैं कि काबिल कबूल बने कि आपको कबूल कर लिया जाए, उसके लिए जरूरी है कि आप अगले बंदे को कबूल कर लें, आप उसको कबूल कर लें, खाविन को कबूल कर लें, ठीक है, यानी उससे राजी हो जाए, ठीक है, जिस तरह से कि अल्लाह हमसे राजी है कि नहीं, इसके लिए आप अल्लाह से राजी हो जाए, उसी तरह से खाविंद के लिए काबिल कबूल बनने के लिए आप खाविंद को कबूल कर लें, ठीक है, अजीब, इसको हिकमत कहते हैं, तो अल्लाह ताला अपने बंदों को कैसी हिकमत अता फरमाते हैं कि अगर उसको कोई काम कहें तो सेट ऑब्टेनेबल स्टैंडर्ड्स, अचीवेबल स्टैंडर्ड्स भी इसको कहते हैं, ठीक है, ऐसे स्टैंडर्ड्स रखें जो कि अचीवेबल हो, अनअचीवेबल ना हो, ऐसे ना हो कि जिनको के पूरा ही ना किया जा सकता हो, ऐसे स्टैंडर्ड्स ना रखें अपने खाविंद के लिए, ठीक है, दुनिया में कोई ताल्लुक परफेक्ट कामिल नहीं हो सकता, कोई भी ताल्लुक कामिल नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ कमी बेशी होती ही है, उसको बर्दाश्त करना भी सीखें, ठीक है, कमी बेशी को बर्दाश्त करना सीखें, इसी तरह फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस, माली उम्मीदों को भी हकीकत पसंदाना रखें, ठीक है, ना खाविंद के ऊपर इतना बोझ डालें कि उसके लिए अखराजात को पूरा करना मुश्किल हो जाए, उसके ऊपर इतना बोझ ना डालें कि उसको अखराजात को पूरा करना मुश्किल हो जाए, कि मुझे तो ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे जो है वो अब ऐसे कपड़े चाहिए, ऐसा जेवर चाहिए, या मुझे जो है वो हर वक्त आप मेरे ससुराल भिजवाने का इंतजाम करें, ठीक है, और उसके लिए जो है वो मुझे प्लेन का टिकट चाहिए और अच्छा टिकट चाहिए, और बहुत इस तरह की जो भी हो सकती है, यू कैन आप इमेजिन कर लें, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं इसके अंदर माली अखराजात के ऊपर, या आप जो है वो मेरे मैके वालों की मदद करें, या मेरे मैके वालों के जो है वो उनको भी आप बहुत मतलब तोहफे तहाइफ दें, ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है, तो वो रियलिस्टिक रखें, भाई उनके पास है तो ठीक है रखें, एक्सपेक्टेशन रख सकती हैं, लेकिन अगर नहीं है तो फिर ना रखें, सही है, तो रियलिस्टिक का मतलब ये होता है कि जो चीज रियल हो वो तो हो, लेकिन जो रियल नहीं है वो ना हो, ठीक है, तो ये अजीब तरीका बताया, ठीक है, खुद काबिल कबूल बनने के लिए अगले बंदे को कबूल कर जैसा वो है, ठीक है, अब उसके अंदर उनकी कोताहियां भी होंगी, तो कोताहियों को भी कबूल कर लें, जैसे कि आप भी कोताहियों वाली हैं। ठीक है, जिस तरह से कि हर इंसान कोताहियों वाला होता है, खाविंद कोताहियों वाला होता है, उसी तरीके से आप भी कोताहियों वाली हैं, मैं भी कोताहियों वाला हूं। ठीक है ना। अब अगर मुझे अल्लाह ताला ने शेख की पोजीशन पे बिठाया है, तो अब मेरा काम है इस्लाह करना। ठीक है, तो शेख की पोजीशन वाले के लिए तो ये उसकी मजबूरी भी है, उसका काम ही है इस्लाह करना। तो वो ये नहीं कह सकता कि चूंकि मैं भी तो कोताहियों वाला हूं, तो अब मैं दूसरे बंदे की कैसे इस्लाह करूं। ठीक है, ये तो नहीं हो सकता ना कि डॉक्टर साहब ये कहें कि चूंकि मेरे अंदर भी तो कोई ना कोई मर्ज है, तो अब मैं मरीज का इलाज कैसे करूं। पहले मैं अपना इलाज करता हूं, जब मैं बिल्कुल 100% हो जाऊंगा, फिर उसके बाद मैं मरीज का इलाज करूंगा। नहीं भाई, आपको आपने तालीम हासिल करी है, आपने तरबियत हासिल करी है डॉक्टर बनने की, आपको जो है वो बोर्ड ने सर्टिफिकेशन दे दी है कि अब आप जो है वो मेडिकल प्रैक्टिस करें। ठीक है, मेडिसिन प्रैक्टिस करें। अब आप बीमार हो या आप तंदुरुस्त हो, आपने तो फिर भी मरीजों का इलाज करना है। ठीक है ना, क्योंकि ये आपकी जॉब है। यही शेख का भी मामला है, शेख की जॉब है कि वो अगर खुद परफेक्ट ना भी हो, फिर भी उसने इलाज करना है। लेकिन बीवी की ये जॉब नहीं है, राइट? बीवी को किसी ने शेख नहीं बनाया, शौहर का शेख। बीवी को औलाद का शेख बनाया है, लेकिन शौहर का शेख नहीं बनाया। ठीक है, बीवी को डॉक्टर नहीं बनाया शौहर का। सही है, तो ये रूहानी डॉक्टर इज इक्वल टू शेख, दोनों सेम चीजें होती हैं। तो आप जो है वो बस यही करें कि भाई चूंकि मैं भी कोताहियों वाली हूं, मैं भी गलतियों वाली हूं, उसी तरीके से शोहर भी गलतियों वाला है, तो जिस तरह वो मुझे एक्सेप्ट कर ले, मेरी ये तवक्को है कि वो मुझे एक्सेप्ट कर ले, तो उसी तरीके से उसकी भी तवक्को है कि मैं उसको एक्सेप्ट कर लूं। ठीक है, बजाय इसके कि उसके अंदर हर वक्त जो है वो मीन मीख निकालती रहो। तो ये गलतियां जो है ना फिर हम कर जाते हैं, और इसकी भी बहुत सारी वजूहात होती हैं। एक तो बहुत बड़ी वजह ये बनती है कि जो अनएक्सेप्टेबल अनएक्सेप्टिंग अनएक्सेप्टिंग जो रवैया होता है ना, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये बनती है कि हम पहले से जो है ना वो एक्सपेक्टेशंस बना के आते हैं। ठीक है, शादीशुदा ताल्लुक में दाखिल होने से पहले अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस पहले से बन चुकी होती हैं। वो कैसे बनती हैं? या तो टीवी के ड्रामों और फिल्मों के जरिए से बनती हैं। ठीक है, तो जिन घरानों के अंदर फिल्में चल रही होती हैं आजकल, तो अल्लाह रहम करे जी, जिन घरानों से आप कभी तवक्को नहीं करेंगे कि वहां पे ऐसा हो सकता है, वहां पर भी इंडियन फिल्में चल रही हैं, तो पाकिस्तानी फिल्में चल रही हैं, ठीक है, और अमेरिकन फिल्में चल रही हैं, तो फिल्मों और ड्रामों के अंदर जो है हीरो हीरोइन और जो भी कैरेक्टर्स होते हैं, तो वो तो फिर बड़ी सलाहियतों वाले होते हैं, बड़े जो है वो खूबसूरत भी होते हैं, और उनको पता नहीं क्या क्या कुछ करना भी आता है, और परफेक्ट किस्म के लोग होते हैं, तभी तो वो हीरो और हीरोइन बनते हैं। तो अब उनको देख देख करके जो है ना वो बचपन से जहन के अंदर ऐसी तवक्कोआत बन जाती हैं। दूसरा जो है वो नॉवेलें पढ़ना भी होता है, इस तरह की जो नॉवेलें पढ़ते हैं ना, तो वो उनके अंदर भी फिर उनसे भी जहन साजी हो जाती है ऐसी। ठीक है, तो अब जो है वो ऐसी तवक्कोआत लेकर के गाने सुनने वाली, गानों के अंदर तो फिर जमीन आसमान के गुलाबे मिलाए जा रहे होते हैं। ठीक है, उसी तरह से शेर व शायरी भी, जो बहुत इस किस्म की शेर व शायरी पढ़ने वाले लोग होते हैं, तो उनके भी दिमाग इसी तरह से बन जाते हैं। फिर वो अपना शायराना तखयल जो है ना, फिर वो अपने स्पाउस में तलाश कर रहे होते हैं। ठीक है, कि वो मेरा शौहर ऐसा क्यों नहीं है, और शौहर साहब जो है अगर वो भी शायराना किस्म के शौक रखने वाले हों, तो वो बीवी में तलाश कर रहे होते हैं कि वो मेरी बीवी ऐसी क्यों नहीं है जैसे कि वो शेर व शायरी के अंदर जिस औरत का तस्करा था। ठीक है, तो ये जब ही अल्लाह ताला ने चीजों से मना किया है कि इन चीजों के अंदर मत लगो, वरना तुम अपना जिंदगी खुद ही खराब करोगे, एक्सपेक्टेशंस बना लोगे जो कि पूरी मीट मीट नहीं होने वाली है। ठीक है, तो एक तो ये रीजन बनती है कि पहले से ऐसे ताल्लुक बनाए हुए होते, ऐसे तवक्कोआत बनाई हुई होती है। दूसरी एक और रीजन ये बनती है कि जिद में, ठीक है, एक जिद आ जाती है कि शौहर साहब जो है वो अपनी माँ पे क्यों खर्च करते हैं। ठीक है, तो वो शौहर ने जो है वो माँ पे खर्च कर दिया, सही है, या शौहर ने जो है वो अपनी बहन पे खर्च कर दिया। ठीक है, अब ये नहीं कह रहे कि उसने सही किया गलत किया, ये नहीं कह रहे हम। ठीक है, लेकिन उसने किया। अब जो है ना कि भाई उसने क्यों किया अपनी बहन के ऊपर खर्च, तो चूंकि बहन पे खर्च किया है अब मुझ पर भी खर्च करे, जैसा माँ पे खर्च किया है वैसा ही मेरे ऊपर भी खर्च करे। ठीक है, तो इस तरीके से जिद के जरिए से जब इसको अप्रोच करते हैं ना इस किस्म की सिचुएशन को, तो फिर मामला खराब हो जाता है। ठीक है, फिर वो ऐसे ही मामला बन जाता है कि अब जो है ना वो आपके लिए कबूल नहीं है, सिचुएशन कबूल नहीं है। तो फिर जब आपके लिए सिचुएशन कबूल नहीं है तो फिर आप भी नाकाबिले कबूल बन जाती हैं। ठीक है, तो ये इसकी इसके ऊपर थोड़ी और बात अगले टॉपिक में भी होगी, लेकिन फिलहाल इतना सुन लीजिए कि जिद में आकर के बस बस चूंकि किसी और दूसरे पे खर्च किया है तो इस वजह से मेरे ऊपर भी खर्च करें। भाई सिचुएशन देखें ना, क्यों किया, दूसरे के ऊपर खर्च किया है। ठीक है, उसको समझें कि भाई क्यों किया है, उसका कोई ना कोई इलाज करने की कोशिश करें, खाली जिद तो नहीं पकड़ने का फायदा है। ठीक है, तो अपने आप को ऐसे बनाना चाहिए कि यू आर इजी टू गेट अलोंग विद। ठीक है ना, कि आपके साथ आसानी के साथ जो है ना वो लोगों का गुजारा हो जाए, खुसूसन शौहर का। आप सब लोगों का गुजारा करने की कोई जरूरत नहीं है, ना बहरम लोगों का आपके साथ गुजारा हो जाए, इसकी तो शरीयत ने इजाजत ही नहीं दी है। उनका तो गुजारा बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपके साथ, ना महरम लोगों का। शौहर तो शौहर होता है ना, ठीक है, तो उसका गुजारा आपके साथ आसानी के साथ हो जाए। हमने देखा कि अब चूंकि हमारा तो अल्लाह ताला ने मर्द बनाया है, तो ये सारा जॉब वाला सिलसिला ही था, तो जॉब के ऊपर जब पहली जॉब थी ना उसके अंदर, या जिस जब गया ग्रेजुएशन के फौरन बाद, तो एक से एक 30 मार खान लोग आए। ठीक है, बड़ी जहीन, बड़े जो है वो उनको काम करना आता, बड़ा उनको जो है वो बोलना भी बहुत आता था, काम करना भी बहुत आता था, वैसे भी बड़े इंटेलिजेंट होते थे, लेकिन वो चलते नहीं थे काम के अंदर, जॉब के ऊपर वो चलते नहीं थे। वो क्यों नहीं चलते थे, उसकी वजह ये थी कि उनके साथ गुजारा करना बड़ा मुश्किल था दूसरे लोगों का। ठीक है, तो वो चल के नहीं देते थे जॉब के ऊपर, हत्ता के या तो उनको फायर कर दिया जाता था या बस वो हर बंदा उनका दुश्मन, उनसे उनको अवॉइड कर रहा होता था फिर। ठीक है, और हर वक्त वो जो है वो मैनेजर के सर का दर्द बने हुए होते थे ऐसे लोग। लेकिन हमने देखा कि कुछ ऐसे लोग होते थे कि जो कि बहुत जहीन नहीं होते थे, और बहुत उनको जो है ना वो इल्म नहीं था उनके पास, बहुत जबरदस्त किस्म के पढ़े लिखे और बहुत जबरदस्त किस्म के जो है ना वो उनके पास सर्टिफिकेशन और डिग्रीज नहीं होती थी, लेकिन उनके साथ गुजारा करना बड़ा आसान होता था दूसरे लोगों का। ठीक है, वो लोग जो है वो सक्सेसफुल होते थे, और हर बंदा उनको अपनी टीम के अंदर रखना चाहता था। जहां कोई प्रोजेक्ट हुआ, चलो भाई मैं इस बंदे को अपनी टीम में चाहता हूं, मैं इसके साथ मिलकर के काम करूंगा, इसको आप मुझे दे दीजिए। ठीक है, तो उनकी तो मांग ही खत्म नहीं होती थी ऐसे लोगों की, हालांकि वो कोई बहुत जहीन और बड़े दस्तम के लोग नहीं होते थे, हर जगह चल जाते थे वो माशाल्लाह। ठीक है, तो ये चीज जो है ना वो इंसान को अच्छी जिंदगी के लिए यानी काम आती है, तो हमें ऐसा बनने की कोशिश करनी चाहिए। मुनाफिक बनने के लिए कोई नहीं कह रहा कि आप जो है वो जहां जाएं बस क्या कहते हैं गिरगिट की तरह रंग बदल लें, और वेन इन रोम बी एज द रोमन्स डू, डू एज द रोमन्स डू, जहां पर हैं बस उनके जैसे आप हरकतें करनी शुरू कर दें तो आप एक्सेप्टेबल हो जाएंगे। नहीं, ये मुनाफिकत है, और ये हरगिज इसकी जरूरत नहीं है, और हरगिज इसको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें जो है ना फिर आप अल्लाह ताला के यहाँ तो पहले ही मरदूद हो जाएंगे मुनाफिकत करके, अल्लाह ताला के यहाँ तो फौरन मरदूद हो जाएंगे। ठीक है, अगर गिरगिट की तरह रंग बदलेंगी ना तो अल्लाह ताला के यहाँ फौरन मरदूद हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जिन लोगों के दरमियान आप यानी कबूल होने की कोशिश कर रही है ना गिरगिट बन करके, गिरगिट समझते हैं ना कैमिलियन जो अपना रंग बदल लेता है, जहां पे जाता है वैसा बन जाता है, बहुत सारे ऐसे रेप्टाइल्स होते हैं जो कि अल्लाह ताला ने कोई सलाहियत दी होती है। तो अल्लाह ताला के यहाँ तो फौरन मरदूद बन जाएंगी, लेकिन इवन उन लोगों के दरमियान भी आप बाद में थोड़ा अरसे बाद जाकर के उन लोगों के दरमियान भी मरदूद बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इस तरह का जो इंसान होता है ना वो कल यानी कभी ना कभी लोगों को पता चल जाता है कि ये तो मुनाफिक है, ये तो मुनाफिक है। ठीक है, तो ऐसा करने को कोई नहीं कह रहा, ठीक है, लेकिन बीइंग फ्लेक्सिबल इज इन अ पॉजिटिव वे विदाउट, और जैसे आपने लिखा दीन इज अफेक्टेड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द दीन, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द दीन। ठीक है, उसके बारे में आगे बात आनी थी, दीन के बारे में ऐसा नहीं करने की जरूरत है। ठीक है भाई, वो तो मिजाज की बात हो रही है ना यहाँ पर। ठीक है, अड़ जाना, जिद में आ जाना, ठीक है, जिद में आना एक अलग चीज होती है और दीन पे इस्तकामत के साथ जमे रहना एक अलग चीज होती है। हमें इनका फर्क ही पता नहीं चलता, बूढ़े हो जाते हैं, मरने के करीब आ जाते हैं, हमें ये फर्क पता नहीं चलता कि इस्तकामत किस चीज को कहते हैं और जिद किस चीज को कहते हैं। तो इतना तो इल्म हासिल करना चाहिए ना, अल्लाह ताला ने अकल दी है ना, जो इस्तेमाल करते हैं दुनिया के हर काम के अंदर। यहां पे हम क्यों नहीं अकल इस्तेमाल करते कि इस्तकामत और जिद के दरमियान फर्क पता चल जाए हमें। नहीं करते तो ये हमारा कसूर है, उसके ऊपर हमें सजा मिलती है। ठीक है, तो कर लें बेहतर है कि इससे पहले के कोई बड़ा ब्लंडर कर जाए जिंदगी के अंदर, इस चीज को समझ लें कि इस्तकामत और जिद में क्या फर्क होता है। अच्छा, इन्होंने कुछ लिखा था कि खातून ने बताया कि डॉक्टर ने वो टेस्ट लिख दिए जो पहले हो चुके थे, फिर डॉक्टर ने माजरत कर ली, टेस्ट से मना कर दिया, वो टेस्ट महंगे थे, तो खातून ने जिद पकड़ ली कि जितने के टेस्ट थे वो पैसे मुझे दें या फिर गिफ्ट दें। अच्छा, वो टेस्ट के पैसे मुझे दें या फिर गिफ्ट दें, तो कैसे बचें पैसे, और खुश होकर बता रही थी कि मैंने पैसे निकलवाए। ठीक है, उन्होंने पैसे तो निकलवा लिए लेकिन अपने आप को भी निकलवा लिया। सही है, ऐसे जो लोग जिद पकड़ते हैं ना, तो वो पैसे तो शायद निकलवा भी लें लेकिन फिर अपने आप को दिल से भी निकलवा लेते हैं। इसी को मर्दूद होना कहते हैं, कि आप किसी के दिल से निकल गई अपनी गलत हरकत की वजह से, दिल से निकल गई तो इसको दूसरे अल्फाज में मर्दूद हो जाना भी कहते हैं। ठीक है, तो काबिले कबूल बने। अच्छा, अगला टॉप पॉइंट है मफरूजों से बचें। ठीक है, मफरूजों के लिए अंग्रेजी जुबान का बड़ा अच्छा लफ्ज है जिसपे काफी सारी बातें हमारे होती रहती हैं, अजम्पशंस। ठीक है, अजम्पशन कहते हैं मफरूजों को अंग्रेजी के अंदर, और जैसे कि समझाया था कि अजम्पशन जो है ये नाउन है, वर्ब इसका क्या है, अस्यूम, ASSUME। ठीक है, तो ASS जो है ना, इसको उर्दू में या पंजाबी में अगर ट्रांसलेट करें तो खोता भी कह सकते हैं उसको, खोता, तो खोता यू एंड मी। ठीक है, तो व्हेन यू अस्यूम यू मेक अ खोता आउट ऑफ यू एंड मी, ठीक है, यानी आप बेसिकली जो है ना वो गधे बन रहे हैं और अगले बंदे को भी गधा समझ रहे हैं व्हेन यू आर अस्यूमिंग। ठीक है, तो नेवर एज्यूम, तो एज्यूम का मतलब क्या होता है, एज्यूम का मफरूजे का मतलब क्या होता है, अगर आप जल्दी से कोई बता दें मफरूजे का क्या मतलब होता है, सही मतलब बताएं जैसे कि समझाया है, क्या मतलब होता है मफरूजे का, असम्पशन का क्या मतलब होता है, आपने एज्यूम कर लिया तो क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया गुमान, गुमान का मतलब क्या होता है, ऐसा मतलब चाहिए जो कि समझ में भी आए और बल्कि समझाया भी है, तो बस उसी को बता दें समझाया अगर याद है तो। हाँ, बगैर इल्म के बात करना, बगैर इल्म के बात करना, इसको अज्यूम करना कहते हैं, गुमान रख लिया कि ऐसा होगा, ऐसा है, गुमान कर लिया, पता नहीं है कि ऐसा है कि नहीं है। ठीक है ना, कोई दलील नहीं है आपके पास, कोई मुशाहिदा नहीं है आपके पास, ठीक है, आपने ना देखा ना आपने सुना ना आपने जो है वो उसको प्रूव किया, बस बना लिया जहन के अंदर एक मफरूजा ऐसा है। एक मिसाल के तौर पर पिछले टॉपिक से इसका ताल्लुक बनता है कि खाविन साहब जो है ना, उन्होंने अपनी माँ के ऊपर पैसे खर्च किए, माँ को कोई चीज ला करके दी, ठीक है, बहन के ऊपर पैसे खर्च किए, उनको जो है वो कोई गिफ्ट दे दिया या उनके बच्चों को कोई गिफ्ट दे दिया या उनके और कोई मसले में उनकी मदद करी। ठीक है, हत्ता के ऐसे भी खाविंद होते हैं जो जेठानी के ऊपर भी खर्च करते हैं। ठीक है, तो वो खाविन साहब ने बहन पे खर्च किया, माँ पे खर्च किया, जठानी पे खर्च किया, ठीक है। तो अब जो है ना मफरूजा बना लिया, इसका मतलब ये है कि उसको मेरी तो कोई परवाह ही नहीं है, ठीक है, उसको मेरी तो कोई परवाह नहीं है, उनको मेरा तो ख्याल ही नहीं है, उनको मेरे तो मुझसे तो कोई मोहब्बत ही नहीं है, उनको तो सिर्फ अपनी बहन से मोहब्बत है, उनको तो सिर्फ अपनी अम्मी का ख्याल है, उनको तो जेठानी साहिबा का ख्याल है या जो है वो देवरानी साहिबा का ख्याल है, ठीक है, मेरा तो कोई उनको ख्याल ही नहीं है। तो भाई ये जो आपने एक नतीजा निकाला है ना, ये मफरूजा कहलाएगा जब तक कि आप इसकी तहकीक ना कर लें, ठीक है, जब तक आप इसकी तहकीक ना करें कि भाई उन्होंने अगर उसके ऊपर खर्च किया या फलानी पे खर्च किया या फलानी जगह पे पैसे दिए हैं तो इसकी कोई वजह होगी, ठीक है ना, किस वजह से उन्होंने वहां पे किया, तो उस वजह को मालूम करें ना, बजाय इसके कि गुमान करके बैठ जाए कि इसका मतलब ये है कि उनको मेरी परवाह ही नहीं है, जैसे कि आमतौर पर ये जुमला चलता है, ठीक है। तो ये मफरूजा है, ठीक है, तो मफरूजों से बचें। भाई उसकी वजह क्या हो सकती है कि हो सकता है उन्होंने मजबूरन खर्च किया हो, मजबूरन खर्च किया हो, ठीक है, यानी वो मजबूर थे। अब क्यों मजबूर थे, तो इसकी क्या वजह हो सकती है कि वो मजबूर थे, एक रीजन ये हो सकती है कि उनको माँ से मोहब्बत है, मोहब्बत के हाथों इंसान मजबूर होता है कि नहीं होता, बहन से मोहब्बत है तो नहीं होती, नहीं होनी चाहिए बहन से मोहब्बत, आपको अपनी बहन से मोहब्बत नहीं है, आप अपने भाई से तवक्को नहीं करते कि वो आपसे मोहब्बत करे, लेकिन खाविंद को इजाजत नहीं है कि वो अपनी बहन से मोहब्बत करे, राइट, खाविंद को इजाजत नहीं है कि वो अपनी बहन से मोहब्बत करे और जो है वो माँ से मोहब्बत करे, खुद करेंगी माँ से मोहब्बत, खाविंद को इजाजत नहीं है कि माँ से मोहब्बत करे, भाई मोहब्बत के हाथों मजबूर है इस वजह से उधर उसने वहां पे खर्च किया, ठीक है। या कभी ऐसा भी होता है, और हमारे यहाँ तो अनफॉर्चुनेटली बहुत ऐसा होता है कि हाथ मरोड़ करके जो है वो पैसे निकाले जा रहे होते हैं, ठीक है ना, बाकायदा अब्यूज करके औलाद से पैसे निकलवाए जा रहे होते हैं, ठीक है ना, उसको जो है वो ताने दे करके कि तू तो जन मुरीद हो गया है, तू तो ये हो गया है, तो ऐसा हो, ऐसे हो तुम, वैसे हो तुम, ये हो तुम, तो इस तरह की चीजें करके पैसे निकलवाए जा रहे होते हैं, इस वजह से वो खर्च कर रहे हैं। तो पहली पॉसिबिलिटी ये है कि वो मोहब्बत के हाथों मजबूर है, जैसे कि आप मोहब्बत के हाथों मजबूर हैं, इसी तरह वो भी मोहब्बत के हाथों मजबूर है, बहन की मोहब्बत, माँ की मोहब्बत, भाई की मोहब्बत, जिसकी वजह से जठानी को वो दे रहा है, ठीक है। दूसरी रीजन कि उसको मजबूर करके उससे उसकी मर्जी के खिलाफ उससे पैसे निकलवाए जा रहे हैं, ये बहुत होता है हमारे यहाँ मुआशरे के अंदर। और तीसरी क्या रीजन हो सकती है, तीसरी रीजन ये होती है, बल्कि हो सकती नहीं है, अक्सर यही होती है कि उस बेचारे को पता ही कुछ नहीं है, इल्म ही नहीं है उसके पास कि उसको कैसे हैंडल करना चाहिए इन सिचुएशंस को, राइट, उसको कुछ पता ही नहीं है कि बीवी के साथ कैसे मामला रखना है, माँ और बहन के साथ क्या मामला रखना है, उसके पास इल्म ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट तो है, राइट, बहुत बड़ा मैथमेटिशियन मैथमेटिशियन तो है, बहुत अच्छा कंप्यूटर साइंटिस्ट तो है, क्योंकि उसका उसने इल्म हासिल किया है, माँ बाप ने उसको इल्म सिखाया है कंप्यूटर साइंस का, बड़ा अच्छा डॉक्टर बनाया है, बड़ा अच्छा इंजीनियर बनाया है, यूनिवर्सिटी भेज करके इल्म सिखाया है, लेकिन लाइफ साइंसेस नहीं सिखाई, राइट, ये जिंदगी कैसे गुजारनी है, रिश्तों के साथ कैसे मामला करना है, हुकूक का क्या मामला करना है, ये तो कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखाती जहां पे तालीम का जेवर हासिल करने के लिए हम अपने औलादों को भेजते हैं, राइट, तालीम के जेवर से आरास्ता करने के लिए बेटियों और बेटों को भेजते हैं, वहां पर ये जेवर तो नहीं होता, इसको तो जेवर समझा ही नहीं जाता, ठीक है। तो इल्म कभी हासिल ही नहीं किया, ना किसी ने दिया, ना उसने खुद हासिल करने की कोशिश करी, तो बेचारा जाहिल है आपकी तरह, वो भी जाहिल है, आप भी जाहिल है, वो भी जाहिल है, आप तो माशाल्लाह कम से कम क्लास ले रही हैं, वो तो क्लास भी नहीं लेता, उसको तो ये सुनने का तौफीक ही नहीं है इन बातों को, अल्लाह ने आपको तौफीक नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, ठीक है, उसको तो तौफीक ही नहीं मिली, वो तो सुनता ही नहीं है, तो उसको कैसे समझ में आएगा कि माँ के ऊपर कैसे खर्च करना है, बीवी बहन के ऊपर कैसे खर्च करना है, बीवी के साथ कैसे खर्चा करना है, ठीक है। तो अजम्पशंस ना करें, ये क्लियर रीजंस हैं। ठीक है ना, ये इन चीजों का इल्म हासिल करें कि अभी मसला क्या है, क्या जाहिल है इस वजह से वो ऐसी हरकत कर रहा है, तो अब इसका इलाज क्या है, जहालत का क्या इलाज होता है, इल्म। जैसे हमारे हजरत फरमाते हैं ना कि सुस्ती का कोई इलाज नहीं है सिवाय चुस्ती के, ठीक है, सुस्ती का कोई पुड़िया नहीं खिला सकते कि वो चुस्त हो जाए। वो कल हमारे यहाँ माली साहब आए, तो वो पौधों के लिए ना वो ताकत की दवा लेकर के आ गए। मैंने कहा भाई ताकत की दवा क्या चीज होती है, बहरहाल वो माली थे, तो हमने कहा भाई हम तो माली भी नहीं है, मैंने तो माली है आलम, वो तो फिर भी माली थे, हम तो माली भी नहीं है। मैंने कहा ये ताकत की दवा है, इसको डाले ना तो पौधे के अंदर ताकत आ जाती है। मैंने कहा चले ठीक है आप डाल दें भाई की मर्जी। तो चुस्ती के लिए कोई ताकत की दवा नहीं है, वाइटामिन डी खिला करके जो है ना वो चुस्ती दूर नहीं हो जाती, वो सॉरी सुस्ती दूर नहीं हो जाती, ठीक है, सुस्ती, मैं पता नहीं चुस्ती बोलता आ रहा हूं था। सुस्ती का कोई इलाज नहीं है, ताकत की दवा खिला करके वाइटामिन डी खिला करके आप सुस्ती को दूर नहीं कर सकते, सुस्ती का इलाज सिर्फ चुस्ती है, ठीक है, ये हमारे हजरत फरमाते हैं, मैं नहीं कहता, हजरत फरमाते हैं। तो उसी तरीके से ना जहालत का कोई इलाज नहीं है कि आप जो है ना वो आप जो है वो कोई बुढ़िया खिला दें, आप जो है वो वजीफे पढ़वा दें कि इसकी जहालत दूर हो जाए, या जादू टोना कर दें कि इसकी जहालत दूर हो जाए, नहीं, जहालत का इलाज सिर्फ इल्म हासिल करना है, उसके अलावा कोई इलाज नहीं है इसका, ठीक है। तो अब आपके शोहर साहब जाहिल हैं तो कुछ करें कि किसी तरह उनको इल्म हासिल हो जाए, या उन तक इल्म पहुंचाएं। एक कोई शख्स जो है वो खाने से इनकार कर दे तो उसको फिर किसी तरह से खाना पहुंचाते हैं ना, ठीक है, क्योंकि समझते हैं कि अगर नहीं खाएगा तो मर जाएगा। उसी तरीके से जाहिल शख्स जो होता है, और वो है भी कोई ऐसा करीबी अजीज जैसे खाविंद, तो भाई अगर उसके पास इल्म नहीं पहुंचा तो वो भी मर जाएगा, रूहानी मौत मर जाएगा, राइट, क्योंकि बगैर इल्म के वो जुल्म कर रहा है, राइट, वो जहालत की वजह से जिसका हक जितना बनता था उसकी बजाय उसको उससे ज्यादा दे रहा है या उससे कम दे रहा है, इसको जुल्म करना कहते हैं। तो वो जुल्म कर करके रूहानी मौत मर रहा है, अगर इसी हाल में उसकी जान निकल गई तो वो जहन्नुम के पेट में चला जाएगा। तो अब किसी तरह से उसको इल्म पहुंचाएं, खैरख्वाही करें उसके साथ, ठीक है, इसको नफली चीज ना समझें कि इन पहुंचाया तो सही है, नहीं पहुंचाया कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, नहीं मसला है, बहुत बड़ा मसला है, सबसे बड़ा मसला है, ठीक है। तो इल्म की मेहनत करें किसी तरीके से खामे तक इल्म पहुंच जाए, चाहे आपके हाथ से खाए, जैसे ना नहीं खिलाती, बच्चा नहीं खाता, हमने तो बड़ा देखा, ठीक है ना, बच्चा नहीं खा रहा, बच्ची नहीं खा रही, तो जी अब उसको चने मुझसे नहीं खा रही, अम्मी आप खिला दें, आपसे नहीं खा रही, अब्बू आप खिला दें, राइट, अच्छा किसी से नहीं खा रही, अच्छा जो अपने खानदान में कोई जरा है ना, जरा जबरदस्त तरीके से खाना खिलाने वाली, उन तक पहुंचा देते हैं, आप खिलाएं, ये मुझसे नहीं खा रही, क्यों, क्योंकि नहीं खाएगी तो मर जाएगी, कितनी अहमियत है इस बात की ना, हमारे यहाँ एक से नहीं खाता दूसरे दूसरे से खिला, दूसरे से नहीं खाता, अच्छा मुख्तलिफ तरीकों से वो खाने की चीज को जो है वो चेंज कर करके ऐसे बनाएंगी, फिर वैसे बनाएंगी, ऐसे नहीं खा रहा, अच्छा वैसे बना लेते हैं, वैसे नहीं खा रहा, तीसरे तरीके से बना लेते हैं, क्योंकि खिला के दम लेना है, खिला के दम लेना है, तो उसके लिए सारी जहानत इस्तेमाल कर रही होती है, यही माए इल्म के लिए जहानत किधर चली जाती है, क्योंकि इसकी अहमियत ही नहीं है कोई, हुकूक का इल्म इसकी अहमियत ही कोई नहीं, ठीक है। अब वो करता रहे जुल्म, जाए जहन्नुम में, मेरी जिंदगी भी जहन्नुम, हत्ता के इतना भी समझ में नहीं आता कि जहन्नुम में तो वो अपनी जहन्नुम में तो बाद में जाएगा, राइट, अपनी जहन्नुम में तो वो बाद में जाएगा, पहले तो वो मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना रहा है अपनी जहालत की वजह से, वो मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना रहा है अपनी जहालत की वजह से, अपनी भी खैरख्वाही नहीं है कि अपनी ही जिंदगी को जहन्नुम बनाने से बचने के लिए कम से कम उसको इल्म पहुंचाने की कोई ना कोई मेहनत करें, राइट, कोई ना कोई तरीका इस्तेमाल करें ताकि कम से कम मेरी जिंदगी को जहन्नुम बनाने से वो बचे, रुके नहीं, क्या है, बस लड़ेंगी जाकर के, बस एक लड़ना है, चीखना है, चिल्लाना है, एक हंगामा खड़ा कर देना है कि बस किसी तरह वो चेंज हो जाए। भाई ऐसे चेंज नहीं होता बंदा, बंदा इल्म के जरिए से चेंज होता है। ठीक है, तो उसकी मेहनत क्यों नहीं करते हैं? खाने खिलाने के लिए जितनी मेहनत करती हैं बच्चे को, उतना जो है वो शौहर को इल्म देने के लिए भी कम से कम उतनी तो मेहनत करनी चाहिए ना। अजम्पशन करके बैठी हुई है कि नहीं उसको मेरी परवाह ही नहीं है, ताकि लड़ाई हो। शैतान जो है अजम्पशन करवा देता है ताकि घर के अंदर लड़ाई होती रहे बस, खाली ताकि उसका काम बनता रहे। तो नहीं, फरमाते हैं कि ये पॉइंट भी जहन में रखिए, अजम्पशंस आर थर्माइट फॉर लीडरशिप। लीडरशिप के लिए आदत है, अजीब बात हो रही। टर्माइट कहते हैं दीमक को, ये दीमक की तरह चाट जाती है। नॉट लीडरशिप बल्कि रिलेशनशिप होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, ये जानी अंग्रेजी किसने लिखी है इसके अंदर, लेकिन खैर। तो ये रिलेशनशिप के लिए जो है ना वो अजम्पशंस दीमक है। तो फरमाते हैं कि ये जो मियां बीवी का ताल्लुक होता है ना, तो इसमें औरतें जो अजम्पशंस मफरूजे कायम कर लेती हैं, ये दीमक की तरह होती है। जिस तरह दीमक लकड़ी को खा जाती है, ये अजम्पशंस मियाँ बीवी के ताल्लुक को कमजोर कर देते। ठीक है, तो अजम्पशंस ना करें, ना बुरी अजम्पशंस करें, और ना जो है ना वो कोई बहुत ऊंची अजम्पशंस करके बैठ जाए उनके बारे में, जिसको कि वो मीठी ना कर सकें। जब मतलब पता नहीं उनको क्या समझ कर रखा हुआ है कि बस उनको तो सब कुछ खुद ही पता चल जाना चाहिए, मेरी क्या जरूरियात हैं, मेरी क्या जो है वो उन चीजें हैं, या दीन क्या कहता है, और सच्ची बात क्या है और हक बात क्या है, ये उनको उनको पता होना चाहिए सब कुछ। पता है उनको सब कुछ, अब गुमान करके बैठी हैं कि उसके ऊपर अमल करें। भाई इल्म ही नहीं है, आपने गुमान कर लिया कि उनके पास इल्म है, आपने मफरूजा बना लिया कि आपके शौहर साहब के पास इल्म है, और उसके ऊपर तवक्को करके बैठी हुई है कि अब वो अमल क्यों नहीं कर रहे अपने इल्म के ऊपर। ऐसे मफरूजे का कोई फायदा नहीं है, यू आर जस्ट मेकिंग एन एस आउट ऑफ यू एंड मी, अज्यूम। ठीक है, शोहर को भी खोता समझ रही है, अपने आप को भी खोता समझ रही है, खोता बना रही है। ऐसा नहीं है भाई, इल्म नहीं है, ये बात मान लेनी चाहिए हम लोगों को, हमारे पास इल्म नहीं है। ठीक है, इल्म जब तक हासिल नहीं करेंगे उस वक्त तक इल्म नहीं आएगा। जहालत का कोई हल नहीं है सिवाय इल्म हासिल करने का। ठीक है, और डिग्रियां उसके लिए हासिल करने की जरूरत नहीं होती, उसके लिए तरबियती उलूम की जरूरत पड़ती है। इसको हासिल करें और अगले बंदे को पहुंचाने की कोशिश करें जितना कर सकती हैं। याद रखें, जिस तरह आपने अपने न्यू बॉर्न बेबी को और 1 साल के बेबी को मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो खाने खिलाने की मेहनत करी है ना, उसी तरीके से अपने शौहर को इल्म पहुंचाने की भी मेहनत करनी पड़ेगी। गुमान करके मत बैठें कि उसको सब कुछ पहले से पता है, ना आपको पता है ना उसको पता है। अच्छा, इसके बाद जो अगला टॉपिक है, हालात के साथ अपने आप को बदलें, तो बस इसको बस टच करके आज की क्लास खत्म करनी थी। तो बस ये पहला पॉइंट पढ़ के कि अगला पॉइंट लिखते हैं कि जो बहुत अहम है, रोल ओवर विद द चेंजेस। अभी रोल ओवर वाली अंग्रेजी भी उसी तरह की अंग्रेजी लग रही है जैसे अजम्पशंस आर टर्माइट फॉर द लीडरशिप। ठीक है, तो वो नहीं था तो इसको भी हम फिर इसको मॉडिफाई करेंगे कि लर्न टू अडैप्ट विद द चेंजेस, लर्न टू अडैप्ट योर सेल्फ विद द चेंजेस, कि जब जिंदगी के हालात बदलते हैं तो अपने आप को भी बदले। ठीक है, तो जैसे पीछे भी बात हुई थी कि इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप जो है वो किसी बेदीन घराने में चली गई हैं तो अब आप भी नमाज पढ़ना छोड़ दें, क्योंकि वहां कोई नमाज नहीं पढ़ता तो आप भी नमाज पढ़ना छोड़ दें, वहां पे कोई पर्दा नहीं करता तो आप भी पर्दा करना छोड़ दें, राइट? या शौहर के साथ शादी हुई, शौहर साहब जो है वो अमेरिका में जॉब करते थे या कहीं और ऐसे मुल्क में थे जहां पे कि जो है वो पर्दे वालियों को टेढ़ी निगाह से देखा जा रहा है, तो अडेप्ट विद द चेंजेस, चलो जी आपने जो है वो बुरका उतार दिया, निकाब करना छोड़ दिया। ठीक है, या कोई इस किस्म की और तब्दीली लेकर के आ गई, हरगिज हरगिज इसका ये मतलब नहीं। ठीक है ना, क्योंकि ऐसा करेंगी तो दुनिया में भी रुसवा, आखिरत में भी रुसवा। तो यहां पर अडेप्ट द चेंजेस का मतलब जो है वो मिजाज के चेंजेस होते हैं, जिसका के बाद बाकी तफसील इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे। किसी का कोई सवाल या कोई कमेंट हो तो पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। है, इंशाल्लाह अपने यहाँ पे क्लास खत्म करते हैं। उन्होंने क्या लिखा था, अपने दिमाग की बेस पर किसी चीज के बारे में कुछ समझना। अपने दिमाग की बेस नहीं, मतलब बस जो समझाया है बस वही मतलब है इसका, बगैर इनके बात करना या बात समझ लेना, इसको अजम्पशन कहते हैं। ठीक है, वाह दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम।